जरा एक स्थिति की कल्पना कीजिए। किसी को एक नई नौकरी का ऑफर मिलता है, पद बहुत ही शानदार है और वेतन में सीधे $30,000 मतलब लगभग 25 लाख रुपए का इजाफा हो रहा है।
अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी रकम है।
बिल्कुल, कागज पर देखा जाए तो ये एक ऐसा मौका है जिसे कोई भी मतलब बिना सोचे तुरंत स्वीकार कर लेगा। लेकिन वो इंसान इस प्रस्ताव को सिर्फ इसलिए ठुकरा देता है क्योंकि अंदर से उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही होती है।
अच्छा,
हाँ, उसके अंदर की आवाज या इंट्यूशन कह रही है कि ये रास्ता सही नहीं है। अब ये सुनकर शायद कोई भी यही कहेगा कि ये बहुत ही बेवकूफी भरा फैसला था, है ना?
हाँ, मतलब ज्यादातर लोग तो यही कहेंगे।
लेकिन आज की हमारी इस डीप डाइव में हम कुछ ऐसे ही अजीब, गहरे और मतलब पूरी जिंदगी को बदल देने वाले फैसलों के इर्द गिर्द चर्चा करने वाले हैं।
और ये एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है ये समझने के लिए कि कैसे गहरे सिद्धांत और हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो आपस में टकराते हैं।
बिल्कुल।
जिस स्रोत सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं वो डॉक्टर क्रेग कीनर का एक बहुत ही विस्तृत लेक्चर है।
राइट।
तो ये लेक्चर एक प्राचीन धार्मिक ग्रंथ रोमियो की किताब के एक बहुत ही विशिष्ट हिस्से पर गहराई से बात करता है, अध्याय 10 से 12 के बीच। और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि डॉक्टर कीनर इस प्राचीन टेक्स्ट का उपयोग ये बताने के लिए करते हैं कि कैसे ब्रह्मांड और ईश्वर के बारे में जो बड़े विचार है ना,
राइट,
वो हमारे सुबह उठने, समय बिताने और मतलब लोगों से बात करने के तरीकों को पूरी तरह से बदल सकते हैं।
और मुझे लगता है कि यही इस चर्चा का सबसे रोमांचक हिस्सा है, क्योंकि अक्सर लोग जब ऐसे पुराने ग्रंथों के बारे में सुनते हैं तो उन्हें लगता है कि ये कोई बहुत ही उबाऊ दार्शनिक बात होगी जिसका असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है।
हाँ, एक थ्योरी जैसी लगेगी बस।
एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ हम देखेंगे कि ये सब कुछ एक बहुत ही व्यवहारिक या जमीनी स्तर पर काम करता है। लेकिन देखो, इस चर्चा की गहराई में जाने से पहले हमारे स्रोत के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात स्पष्ट करना जरूरी है।
हाँ, ये क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है।
जब बात ऐसे धार्मिक ग्रंथों की आती है तो लोग अक्सर इसे अलग अलग गुटों या मतलब विचारधाराओं के चश्मे से देखने लगते हैं।
बिल्कुल। और जब लोग इन खास टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो वो अक्सर भारी भरकम धार्मिक बहसों में उलझ जाते हैं। जैसे एक बहुत पुरानी बहस है, जैसे कैल्विनिज्म बनाम आर्मेनियनवाद।
हाँ, वो फ्री विल वाली डिबेट।
बिल्कुल। अगर इसे बहुत आसान शब्दों में समझें तो ये इस बात की बहस है कि क्या इंसान की किस्मत और उसके फैसले पहले से तय हैं या फिर इंसान के पास अपनी पूरी आजादी यानी फ्री विल है।
राइट।
और इसी तरह एक और बहस है कि ईश्वर इतिहास को अलग अलग कालखंडों में कैसे चलाता है, जैसे डिस्पेंसनलिज्म बनाम कोवेनेंट थियोलॉजी। लेकिन डॉक्टर कीनर की खासियत ये है कि वो इन गुटों की बहस में बिल्कुल नहीं पड़ते।
मतलब वो किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं।
एकदम सही। उनका उद्देश्य किसी एक विचारधारा को सही या गलत साबित करना नहीं है। वो एक निष्पक्ष रिसर्चर की तरह केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि मूल टेक्स्ट में वास्तव में क्या लिखा गया है
और उस समय के लोगों के लिए उसका क्या मतलब था।
एग्जैक्टली। और हमारी इस चर्चा का उद्देश्य भी बिल्कुल यही है। हम बिना किसी पक्षपात के केवल उन विचारों को रिपोर्ट करेंगे जो स्रोत में दिए गए हैं। हम किसी भी राजनीतिक या धार्मिक पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं।
बिल्कुल, एकदम निष्पक्ष नजरिया। तो चलिए इसी निष्पक्ष नजरिए के साथ इस टेक्स्ट को डिकोड करते हैं। अब इस लेक्चर की शुरुआत में ना एक ऐसी छलांग है जो थोड़ा हैरान करती है।
वो कैसे?
टेक्स्ट शुरुआत में ईश्वर की असीमित शक्ति, उसके अथाह ज्ञान और मतलब ब्रह्मांडीय रहस्यों की बात करता है। ये एक बहुत ही ऊंची दार्शनिक उड़ान जैसी लगती है।
हाँ, एक कॉस्मिक लेवल की बात।
राइट। लेकिन फिर अचानक से ये सीधे हमारे भौतिक शरीर और हमारी दिनचर्या पर आ गिरता है, मतलब आकाश की ऊंचाइयों से सीधे जमीन पर। ये जो छलांग है, ये काम कैसे करती है?
देखो, इस ग्रंथ की असली ताकत इसी छलांग में छिपी है। जिस हिस्से से ये चर्चा शुरू होती है वहां एक बहुत ही काव्यात्मक स्तुति गान है, मतलब एक तरह की डॉक्सोलॉजी।
अच्छा।
इसमें कहा गया है कि ईश्वरी हर चीज का स्रोत है, उसी के माध्यम से सब कुछ संचालित होता है और उसी के लिए सब कुछ है।
सुनने में तो ये एक टिपिकल धार्मिक बात लगती है।
हाँ, लगती है। लेकिन अगर हम इसके पीछे की फिलॉसफी को समझे तो ये अरस्तु और मध्यकालीन विचारकों के जो कारणों या कॉजेशन की सिद्धांत है ना, उससे बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है।
ये कॉजेशन या कारणों का सिद्धांत क्या है, थोड़ा समझाएंगे?
बिल्कुल। अरस्तु मानते थे कि किसी भी चीज के वजूद में आने के पीछे अलग अलग कारण होते हैं। इसे एक घर बनाने के उदाहरण से समझते हैं।
ठीक है।
एक कारण होता है शुरुआती कारण, जैसे वो आर्किटेक्ट जिसने घर का नक्शा बनाया। दूसरा होता है माध्यम, मतलब वो मजदूर और ईंटें जिनके जरिए वो घर बना।
और तीसरा
होता है अंतिम उद्देश्य, यानी उस घर में रहना। अब यहां डॉक्टर कीनर बताते हैं कि ये प्राचीन टेक्स्ट ईश्वर को इन तीनों रूपों में देखता है। वो शुरुआत है, वो माध्यम है और वही अंतिम लक्ष्य है।
मतलब एवरीथिंग इज फ्रॉम हिम, थ्रू हिम एंड टू हिम।
एग्जैक्टली। और जब कोई इंसान इस बात को पूरी तरह से समझ लेता है कि पूरी दुनिया इसी सिद्धांत पर चल रही है, तो उसका अगला कदम क्या होना चाहिए, यहीं से बात हमारे शरीर पर आती है।
और मुझे लग रहा है कि यहीं पर वो मशहूर विरोधाभास या जो ऑक्सीमोरॉन है वो सामने आता है, क्योंकि टेक्स्ट कहता है कि अपने शरीर को एक जीवित बलिदान के रूप में पेश करो।
हाँ, a living sacrifice।
मतलब ये अपने आप में एक विरोधाभास है ना। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी वेदी पर बलिदान दिया जाता था तो वो कोई जीवित चीज तो होती नहीं थी।
सही बात है। प्राचीन दुनिया में चाहे वो रोमन समाज हो या यहूदी समाज, बलिदान का मतलब यही था कि किसी जानवर को मारा जाए और उसे वेदी पर चढ़ा दिया जाए।
बलिदान का सीधा मतलब मौत से जुड़ा था।
बिल्कुल। लेकिन यहाँ ये टेक्स्ट एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार पेश कर रहा है। ये कह रहा है कि असली बलिदान मरने में नहीं है, बल्कि हर दिन जीवित रहने और अपने शरीर के कामों को एक बड़े उद्देश्य के लिए समर्पित करने में है।
वाओ, ये तो पूरा नजरिया ही पलट देता है।
और सबसे अहम बात, टेक्स्ट इस जीवित बलिदान को एक तार्किक कार्य कहता है। ग्रीक भाषा में इसके लिए लॉजिकोस शब्द का इस्तेमाल हुआ है।
लॉजिकोस मतलब लॉजिक से जुड़ा हुआ।
हाँ, इसका सीधा संबंध हमारे दिमाग, हमारे तर्क और हमारे सोचने की प्रक्रिया से है।
बहुत ही मॉडर्न एनालॉजी की याद दिलाती है। ये बिल्कुल एक कंप्यूटर या स्मार्टफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OS को अपडेट करने जैसा है।
अरे वाह, ये एनालॉजी बहुत दिलचस्प है।
है ना? मतलब हमारा जो शरीर है वो एक हार्डवेयर है जो काम करता है, लेकिन अगर कोई चाहता है कि उसका ये पुराना हार्डवेयर एक बिल्कुल नए और बेहतर तरीके से काम करे, तो उसे क्या करना होगा? उसे अंदर के ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरी तरह से बदलना होगा।
बिल्कुल, उसे अपडेट करना होगा।
तो यहाँ इंसान का दिमाग वो नया OS है, और जब वो अपडेट हो जाता है तो उसका व्यवहार यानी उसका हार्डवेयर एकदम नए तरीके से काम करने लगता है।
ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाला रूपक यहाँ एकदम सटीक बैठता है। और अगर हम इस एनालॉजी को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, तो सवाल ये उठता है कि वो पुराना OS क्या था जिसे हटाना जरूरी है।
हाँ, पुराना सिस्टम क्या था?
डॉक्टर कीनर समझाते हैं कि टेक्स्ट में पुराने OS को ये वर्तमान युग या ग्रीक में एओन कहा गया है। ये वो दुनियामी सोच है जो सिर्फ स्वार्थ, दिखावे और अपने फायदे पर फोकस करती है।
मतलब एक सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच।
बिल्कुल। टेक्स्ट कहता है कि इस पुराने OS के सांचे में ढलना बंद करो। जब दिमाग में नया OS इंस्टॉल होता है ना, तो इंसान दुनिया को इस वर्तमान युग की नजर से नहीं बल्कि एक नए युग की नजर से देखने लगता है।
और मुझे लगता है कि ये नया युग सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि समय को देखने का नजरिया भी इसमें बदल जाता है।
वो कैसे?
क्योंकि जब OS अपडेट होता है तो सबसे पहला बदलाव ये आता है कि इंसान का समय नापने का पैमाना बदल जाता है। मतलब वो केवल आज के दिन या कल के फायदे के बारे में नहीं सोचता, वो अनंत काल या इटर्निटी के नजरिए से सोचने लगता है।
हाँ, ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है।
और स्रोत में डॉक्टर कीनर की एक बहुत ही व्यक्तिगत और भावुक कहानी है जो दिखाती है कि ये अनंत काल का पैच डाउनलोड होने के बाद इंसान का हार्डवेयर असल जिंदगी में कैसे काम करता है।
हाँ, वो कहानी बहुत ही पावरफुल है। डॉक्टर कीनर बताते हैं कि अपने जीवन के एक बहुत ही मुश्किल दौर में उनकी मुलाकात जॉन नाम के एक स्टूडेंट से हुई थी।
वही जो फ्रेटर्निटी का हिस्सा था।
हाँ, जॉन एक यूनिवर्सिटी की फ्रेटर्निटी में था, मतलब एक ऐसा छात्र समूह जो अपनी बेलगाम पार्टियों और लापरवाही के लिए बहुत जाना जाता था।
राइट।
तो जॉन गहरे डिप्रेशन में था क्योंकि वो अपने कैलकुलस के टेस्ट में फेल हो गया था। उसे लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया ही खत्म हो गई है,
क्योंकि उसका पुराना OS उसे यही बता रहा था कि एक टेस्ट में फेल होना मतलब जिंदगी की सबसे बड़ी हार है।
एग्जैक्टली। तब डॉक्टर कीनन ने उससे एक सीधा सा सवाल पूछा। उन्होंने कहा, क्या बड़ा है, एक साल या अनंत काल?
उफ, ये सवाल बहुत छोटा है, लेकिन सच में इंसान के सोचने के पूरे ढांचे को हिला देता है।
बिल्कुल। डॉक्टर कीनर ने जॉन को समझाया कि वो अपने दोस्तों के साथ शराब पीकर जो समय बर्बाद कर रहा है, वो उन्हें कोई स्थायी या परमानेंट चीज नहीं दे रहा है।
और फिर क्या हुआ?
जब जॉन के दिमाग में इटर्निटी का पैच इंस्टॉल हुआ, तो उसके हार्डवेयर ने काम करना बदल दिया।
उसने पार्टी करना नहीं छोड़ा, लेकिन वहां उसकी भूमिका पूरी तरह से बदल गई।
मतलब वो बदल गया लेकिन उसने अपने दोस्तों को नहीं छोड़ा।
हाँ, वो उन पार्टियों में एक रक्षक बन गया। जब उसके दोस्त नशे में धुत होते थे तो वो अकेला ऐसा इंसान होता था जो होश में रहकर उन्हें सुरक्षित घर या अस्पताल पहुंचाता था, जिसे डेजिग्नेटेड ड्राइवर कहते हैं।
वाओ।
और ऐसा करके उसने अपने ग्रुप के करीब 40 लोगों की जिंदगी को एक नई दिशा दी। ये है हर एक पल को अनंत काल के नजरिए से जीना। डॉक्टर कीनल एक और आंकड़ा देते हैं कि अगर लाखों लोग रोजाना टीवी देखने में जो 3-4 घंटे बिताते हैं,
हाँ, जो कि आजकल बहुत आम है,
बिल्कुल, उस समय का उपयोग अगर प्रार्थना करने या समाज की भलाई में किया जाए तो सोचो ये दुनिया कैसे बदल सकती है।
यार, टीवी वाला उदाहरण तो सीधा आज के समय पर चोट करता है, लेकिन यहाँ एक प्रैक्टिकल सवाल भी उठता है।
क्या सवाल?
ये अनंत काल या इटर्निटी की बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या हर एक पल को अनंत काल के तराजू पर तोलना बहुत थका देने वाला नहीं है?
मतलब आप माइक्रो मैनेजमेंट की बात कर रही हैं?
हाँ, मतलब क्या इंसान को अपने जीवन के हर एक सेकंड को माइक्रो मैनेज करना पड़ेगा? अगर कोई इंसान आराम कर रहा है या बस कुछ मनोरंजक देख रहा है तो क्या वो समय की बर्बादी है? ये तो इंसान को गिल्ट या अपराध बोध से भर देगा।
ये कन्फ्यूजन बहुत स्वाभाविक है, और अच्छी बात यह है कि श्रोत में डॉक्टर कीनर खुद इस बात को स्वीकार करते हैं।
अच्छा, उन्होंने भी ऐसा फील किया था?
हाँ, वो बताते हैं कि उन्होंने भी एक समय पर अपने जीवन को इस तरह माइक्रो मैनेज करने की कोशिश की थी, लेकिन वो एक बहुत ही असफल प्रयास था।
तो फिर इसका असली मतलब क्या है?
साब रखा जाए, बल्कि ये जीवन की समग्र दिशा तय करने के बारे में है।
समझ गई। मतलब ये जानना जरूरी है कि हमारा कंपास किस दिशा में इशारा कर रहा है, ना कि हर एक पत्थर से बचने के लिए हम बार बार स्टेयरिंग व्हील को घुमाते रहें।
बहुत सही कहा आपने।
अगर दिशा सही है तो बीच बीच में आराम करने के लिए रुकना गलत नहीं है। अब अगर ये कंपास मिल गया है तो अगला सबसे बड़ा सवाल ये है कि रोजमर्रा की जिंदगी में सही रास्ते का चुनाव कैसे किया जाए।
ये डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट है।
हाँ, जब दो रास्ते सामने हो तो ये नया ओएस सही फैसले को कैसे पहचानता है?
यहाँ पर ये टेक्स्ट एक बहुत ही स्पष्ट क्राइटेरिया या मापदंड देता है। नए दिमाग का काम ये जांचना है कि क्या उत्तम, मनभावता और सिद्ध है, मतलब गुड, प्लीजिंग एंड परफेक्ट। स्रोत में एक बहुत ही जरूरी बात साफ की गई है। अक्सर लोग सोचते हैं कि ये तीनों अलग अलग स्तर हैं, जैसे कोई चीज थोड़ी अच्छी है, कोई चीज उससे बेहतर या मनभावती है, और कोई चीज एकदम परफेक्ट या सिद्ध है।
हाँ, एक सीढ़ी की तरह।
लेकिन डॉक्टर कीनर बताते हैं कि प्राचीन स्टोइक दार्शनिकों के सोचने के तरीके के अनुसार ये कोई सीढ़ी नहीं है, बल्कि ये एक चेकलिस्ट है। ये तीनों शब्द सही फैसले को पहचानने के एक ही मापदंड के अलग अलग पहलू हैं।
ओह, अब मुझे वो $30,000 की नौकरी वाला उदाहरण समझ आ रहा है। वो यहाँ एकदम सही बैठ का है।
बिल्कुल, डॉक्टर कीनर को एक नौकरी का ऑफर मिला जहाँ उन्हें बहुत ज्यादा वेतन मिल रहा था। कागज पर देखा जाए तो ये उत्तम लग रहा था।
हाँ, गुड तो था ही।
लेकिन जब उन्होंने इस चेकलिस्ट का इस्तेमाल किया तो उन्हें मन में वो शांति नहीं मिली। ये उनके लिए मनभावता या सिद्ध नहीं था। तब उन्होंने प्रार्थना का सहारा लिया
और फिर उन्हें वो सपना आया।
हाँ, उन्हें एक सपना आया जिसमें उनके दोस्त बेन विदरिंगटन दिखाई दिए, जिससे उन्हें एक नई जगह का इशारा मिला जो आखिर में उनके लिए एकदम सही रास्ता साबित हुआ।
लेकिन देखिए, यहाँ चीजें थोड़ी पेचीदा हो जाती हैं। मतलब हर किसी को तो सपने नहीं आते ना।
सही बात है।
और कई बार हमारा लॉजिक एक दिशा में इशारा कर रहा होता है, जबकि हमारी जो अंदर की आवाज या इंट्यूशन है वो किसी दूसरी दिशा में खींच रही होती है।
बिल्कुल।
डॉक्टर कीनर ने खुद आइजैक और रिबेका की कहानी का उदाहरण दिया है जहां उन्होंने तर्क का इस्तेमाल किया। तो जब इंसान का अपना लॉजिक और उसका इंट्यूशन आपस में टकराते हैं तो इस नए ओएसएस को किसे प्रायोरिटी देनी चाहिए?
ये एक बहुत ही रियल स्ट्रगल है। स्रोत के अनुसार ज्ञान और तर्क और हमारी इंट्यूशन, ये दोनों ही मार्गदर्शन के बहुत जरूरी टूल्स हैं। डॉक्टर कीनर नहमाया की प्राचीन कहानी का रेफरेंस देते हैं।
नहमाया, वो दीवार बनाने वाले?
नहमाया के दिल में एक बहुत गहरी प्रेरणा डाली गई, लेकिन साथ ही उन्होंने दीवारों को बनाने के लिए बहुत ही तार्किक और प्रैक्टिकल कदम भी उठाए।
मतलब दोनों का इस्तेमाल किया।
एग्जैक्टली। जब तर्क और इंट्यूशन दोनों एक ही दिशा में इशारा करते हैं तो फैसला लेना आसान हो जाता है, लेकिन जब टकराव होता है तो इंसान को उपलब्ध जानकारी के आधार पर सबसे समझदारी भरा कदम उठाना होता है।
और शायद ये भरोसा भी रखना होता है कि ये नया ओएस समय के साथ सही रास्ते पर ले ही जाएगा।
हाँ, ये आंख मूंद कर छलांग लगाने और बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग करने के बीच का एक नाजुक बैलेंस है।
तो ये नया ओएस सिर्फ एक इंसान के अंदर अकेले काम नहीं करता है ना? है ना? बल्कि जब बहुत सारे इंसान इस नए ओएस के साथ जुड़ते हैं तो वो एक पूरा नेटवर्क बनाते हैं
जिसे हम कम्युनिटी या समुदाय कह सकते हैं।
बिल्कुल, रोमियो के अध्याय 12 के अगले हिस्से में यही बताया गया है कि ये नेटवर्क कैसे काम करता है।
सही कहा, रोमियो 12 3 से 8 का जो हिस्सा है वो एक इंसान से निकलकर पूरी कम्युनिटी पर आ जाता है। इसमें नेटवर्क के स्मूथली काम करने का मूल मंत्र दिया गया है, अपने बारे में ना तो बहुत ऊंचा सोचना और ना ही खुद को बिल्कुल बेकार समझना।
मतलब ना एरोगेंस और ना ही सेल्फ डेप्रिसिएशन।
एग्जैक्टली, अहंकार और आत्महीनता दोनों ही इस नेटवर्क के लिए एक वायरस की तरह हैं। यहाँ बताया गया है कि हर इंसान को विश्वास का एक अलग हिस्सा या पैमाना दिया गया है।
इसका मतलब ये है कि कम्युनिटी रूपी इस बड़े सिस्टम में हर किसी का हार्डवेयर अलग है और उसकी क्षमताएं भी बिल्कुल अलग है।
बिल्कुल, डॉक्टर कीनर अपनी खुद की राइटिंग प्रोसेस का उदाहरण देकर इसे बहुत अच्छे से समझाते हैं।
अच्छा, क्या कहते हैं वो?
वो बताते हैं कि जब उन्होंने रेवोल्यूशन यानी प्रकाशित वाक्य की किताब पर अपनी कमेंट्री लिखी तो उन्हें इसके लिए खास अंदरूनी बुलावा या कॉलिंग महसूस हुई थी। उन्होंने बस अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया जहाँ उसकी जरूरत थी।
ये तो बिल्कुल एक फुटबॉल टीम की तरह लगता है।
वो कैसे?
मतलब एक टीम में हर खिलाड़ी की अपनी एक फिक्स्ड पोजीशन होती है। कुछ डिफेंडर होते हैं, कुछ मिडफील्डर और कुछ स्ट्राइकर होते हैं, है ना?
हाँ, बिल्कुल।
अब अगर हर खिलाड़ी ये सोचे कि उसे ही गोल करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा तालियां तो स्ट्राइकर को ही मिलती हैं, तो वो टीम कभी कोई मैच नहीं जीत सकती।
ये बात तो है।
एक अच्छे डिफेंडर का अपनी जगह पर डटे रहना टीम के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि स्ट्राइकर का गोल करना। मतलब अपनी भूमिका को पहचानना और दूसरों की भूमिका की रिस्पेक्ट करना ही इस नेटवर्क को मजबूत बनाता है।
ये एनालॉजी एकदम सटीक है। हमारा व्यक्तिगत जीवन अकेले आइसोलेशन में नहीं चलता, वो इतिहास और कम्युनिटी के एक बहुत बड़े कैनवस का हिस्सा है। जब हम अपनी जगह को समझ लेते ना तो अहंकार अपने आप खत्म हो जाता है।
लेकिन देखो, अपनों के बीच और अपनी कम्युनिटी में अपनी भूमिका को समझना तो फिर भी थोड़ा आसान लगता है, लेकिन असली टेस्ट तो तब होता है जब ये नया ओएस बाहरी दुनिया के संपर्क में आता है।
हाँ, एक ऐसी दुनिया जो शायद इसके सिद्धांतों के बिल्कुल ऑपोजिट है।
बिल्कुल, तो ये टेक्स्ट बाहरी दुनिया और खासकर जो हमारे विरोधी हैं उनके साथ व्यवहार करने के बारे में क्या कहता है?
यहाँ आकर ये चर्चा अपने सबसे चैलेंजिंग और क्रांतिकारी हिस्से में एंटर करती है। रोमियो 12:9 से 21 तक का हिस्सा इसी बारे में है।
अच्छा,
इसकी शुरुआत होती है भाईचारे के प्रेम से, जिसे ग्रीक में फिलाडेल्फिया कहा गया है। लेकिन इसे पूरी तरह से समझने के लिए हमें उस समय के रोमन संस्कृति के मालवेयर को समझना होगा।
मालवेयर रोमन संस्कृति में?
हाँ, प्राचीन रोमन समाज पूरी तरह से सम्मान और अपमान, मतलब ऑनर एंड शेम पर आधारित एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव संस्कृति थी।
ये ऑनर और शेम का कल्चर काम कैसे करता था?
उस समय रोम में आपका पूरा जीवन, आपकी सफलता इस बात पर डिपेंड करती थी कि समाज में आपका रुतबा क्या है। लोग सम्मान पाने के लिए एक दूसरे को नीचा दिखाते थे, मतलब सोशल लैडर चढ़ने की एक अंधी दौड़ मची रहती थी।
एक तरह का रैट रेस।
बिल्कुल, सम्मान एक ऐसी करेंसी थी जिसे हर कोई बस इकट्ठा करना चाहता था। लेकिन ये टेक्स्ट उस समाज के बीच खड़े होकर एक एकदम उल्टी बात कहता है। ये कहता है कि सम्मान पाने की होड़ मत करो, बल्कि दूसरों को खुद से ज्यादा सम्मान देने की होड़ करो।
यार, ये तो उस समय के समाज में एक तरह से सोशल सुसाइड करने जैसा रहा होगा।
बिल्कुल,
जहाँ हर कोई खुद को बड़ा साबित करने में लगा है, वहाँ दूसरों को अपने से ऊपर रखना बहुत ही मतलब आक्रामक और उल्टा विचार है।
एकदम सही, ये उस समय के सोशल फैब्रिक पर एक सीधा हमला था। इसके अलावा टेक्स्ट गरीबों की देखभाल और मेहमान नवाजी यानी हॉस्पिटैलिटी पर बहुत जोर देता है। यहूदी संस्कृति में अजनबियों को घर में पना देना एक बहुत बड़ा गुण माना जाता था। दूसरी ओर रोमन संस्कृति में अमीर लोग दान तो करते थे, लेकिन अक्सर वो बड़ी बड़ी इमारतें या मॉन्यूमेंट्स बनवाते थे ताकि उन पर उनका नाम लिखा जा सके।
अच्छा, तो वो बस नाम के लिए करते थे?
हाँ, वो गरीबों की मदद इसलिए नहीं करते थे कि उन्हें परवाह थी, बल्कि इसलिए करते थे ताकि समाज में उनका पीआर अच्छा हो सके। वो पूरी तरह से दिखावे का समाज था।
आज के दौर में भी तो हम ऐसा बहुत देखते हैं, जहां लोग किसी की मदद करने से पहले अपना कैमरा सेट करते हैं। ये दिखावे की बीमारी तो बहुत पुरानी है।
बिल्कुल, और इसी कॉन्टेक्स्ट में डॉक्टर कीनर एक बहुत ही पावरफुल हिस्टोरिकल कॉन्ट्रास्ट पेश करते हैं। वो रोम के सम्राट ऑगस्टस और यीशु के जन्म की तुलना करते हैं।
ऑगस्टस, वो जो बहुत पावरफुल एम्परर था।
हाँ, ऑगस्टस आलीशान महलों में रहता था। उसके नाम के बड़े बड़े मंदिर बनवाए गए थे और उसे रोमन शांति, जिसे पैक्स रोमाना कहते हैं, वो लाने वाला और दुनिया का रक्षक घोषित किया गया था।
लेकिन वो शांति तो मिलिट्री के दम पर थी ना?
एग्जैक्टली, वो शांति सेना के खौफ और क्रूरता पर टिकी थी। इसके उलट सच्चे राजा का जन्म किसी महल में नहीं बल्कि जानवरों की चरनी मतलब एक फीडिंग ट्रफ में हुआ।
वाओ, क्या कॉन्ट्रास्ट है।
और उस जन्म की गवाही समाज के सबसे प्रभावशाली लोगों ने नहीं दी बल्कि उन चरवाहों ने दी जिन्हें उस समय के समाज में सबसे निचले और अविश्वसनीय वर्ग में रखा जाता था।
ये तो सत्ता और सम्मान की पूरी परिभाषा को ही पलट देता है। मतलब ये टेक्स्ट साफ कर रहा है कि असली महानता वो नहीं है जो महलों में बैठी है बल्कि वो है जो समाज के सबसे छोटे और कमजोर इंसान के साथ आके खड़ी होती है।
बिल्कुल सही। और देखो, ये विचार सिर्फ पुराने जमाने तक सीमित नहीं रहा। स्रोत में 20वीं सदी के अमेरिका के एक बड़े वैचारिक विवाद का भी जिक्र है।
अच्छा, कौन सा विवाद?
उस समय धार्मिक विचारकों के बीच फंडामेंटलिस्ट्स यानी कट्टरपंथी और मॉडर्निस्ट्स यानी आधुनिकतावादी, इनके बीच एक बड़ा बंटवारा हो गया था।
ये किस बात पे लड़ रहे थे?
एक ग्रुप का मानना था कि केवल बुनियादी धार्मिक विश्वास और सिद्धांत ही जरूरी हैं, जबकि दूसरा ग्रुप मानता था कि सिर्फ समाज सेवा और गरीबों की मदद ही असली धर्म है। दोनों एक दूसरे के एकदम विरोधी हो गए थे।
थ्योरी वर्सेस प्रैक्टिस।
हाँ, लेकिन डॉक्टर कीनर बताते हैं कि कैसे बिली ग्राहम जैसे विचारकों ने इन दोनों को वापस जोड़ा। उन्होंने आर्ग्यू किया कि सच्चा विश्वास और समाज की सेवा अलग अलग नहीं हो सकते।
मतलब दोनों जरूरी हैं।
बिल्कुल। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बदल गया है तो वो आपके कामों गरीबों की मदद करने में दिखाई देना ही चाहिए। सिद्धांत और व्यवहार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।
और शायद इस नए ओएस का सबसे मुश्किल फंक्शन तब ट्रिगर होता है जब बात हमारे विरोधियों की आती है। मतलब अपनों से प्यार करना आसान है, गरीबों की मदद करना भी अच्छा लगता है, लेकिन जब कोई आपके खिलाफ खड़ा हो तब ये टेक्स्ट क्या कहता है?
टेक्स्ट अपने सबसे कठिन निर्देश के साथ इस हिस्से का अंत करता है। जो तुम्हें सताते हैं उन्हें आशीर्वाद दो, बुराई का बदला बुराई से मत लो बल्कि बुराई को भलाई से जीतो।
उफ, रोमन संस्कृति में जहां अपमान का बदला लेना सम्मान बचाने का इकलौता तरीका था, वहां ये विचार तो एक धमाके की तरह रहा होगा।
बिल्कुल। बदला न लेना कमजोरी नहीं थी बल्कि उस कॉम्पिटिटिव संस्कृति के चक्र को तोड़ने की सबसे बड़ी ताकत थी।
यार, अगर हम इस पूरे सफर को समेटें तो ये वाकई में दिमाग को झकझोर देने वाला डीप डाइव रहा है। डॉक्टर कीनर के इस लेक्चर के जरिए हमने देखा कि कैसे ये टेक्स्ट ईश्वर की असीमित शक्ति और ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों से शुरू होता है।
हाँ, वो कॉस्मिक लेवल से।
राइट, लेकिन वो ज्ञान बस हवा में नहीं तैरता, वो जमीन पर उतरता है, हमारे दिमाग के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करता है, समय को देखने का हमारा नजरिया बदलता है।
बिल्कुल।
हमें सही फैसले लेना सिखाता है, हमारे अहंकार को खत्म करके हमें एक कम्युनिटी का हिस्सा बनाता है, और आखिर में हमें एक ऐसी दुनिया में निस्वार्थ प्रेम करना सिखाता है जो केवल अपना फायदा देखती है।
ये इसी बात का सबूत है कि इस असली ज्ञान वो है जो बस किताबों या शब्दों में बंद ना रहे बल्कि इंसानों के व्यवहार, उनके फैसलों और दूसरों के प्रति उनके रवैये में साफ दिखाई दे।
बिल्कुल सही बात है। और अब चलते चलते एक विचार जो इस पूरी चर्चा को आज के हमारे जीवन से जोड़ता है।
हाँ, बताइए।
आज हमने एक नए ओएस और एक ऐसी संस्कृति की बात की जहाँ लोग बस सम्मान पाने के लिए दिखावा करते थे। अब जरा आज के डिजिटल युग के बारे में सोचने वाली बात है
जहाँ सब कुछ ऑनलाइन है।
हाँ, आज इंसानों का दिमाग लगातार सोशल मीडिया के एल्गोरिदम, नोटिफिकेशन और न्यूज फीड से ढाला जा रहा है। इंटरनेट ने पूरी दुनिया को एक स्क्रीन पर तो ला दिया है, लेकिन असल जिंदगी में शायद अकेलापन पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है।
ये तो एक कड़वी सच्चाई
है ना? क्या वो भाईचारा और बिना कैमरे के की गई मेहमान नवाजी जिसकी हमने आज चर्चा की, वो इस डिजिटल दिखावे की दुनिया में कहीं खो गई है? जब एक लाइक और शेयर ही आज के समाज में सम्मान का पैमाना बन गया है, तो ऐसे में वो नया ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा दिखेगा?
ये वाकई सोचने वाली बात है।
बिल्कुल। अगली बार जब कोई अपना फोन उठाता है और बिना सोचे समझे बस स्क्रीन को स्क्रोल करता है, तो उसे ये जरूर सोचना चाहिए कि उसका दिमाग किस सांचे में ढल रहा है और उसका समय किस अनंत काल के तराजू पर तोला जा रहा है। इसी विचार के साथ आज की इस गहरी चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।